होंगे तो जवाब देंगे। एक सवाल से किया उन्होंने, कथा में सांप का किस्सा उनसे पूछो, कथा में सांप कौन थे, और दूसरा सिकंदर दुर्गन के बारे में पूछो, और तीसरा रूह के बारे में पूछेगा, रूह क्या चीज है। जैसे आज भी साइंस इस रूह की तहकीक में जो है लगी हुई है, लेकिन तेरा हाथ में नहीं आता, कांच के पेटे में बंद कर देते हैं कि रूह निकले तो जो नजर आए, तो मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें करते हैं, लेकिन सब अकल से बाहर की चीज है। तो मुश्किल होता है, जो आपने सवाल किया रूह के बारे में, तो आप खामोश रहे, इसलिए कोई चीज आप अपनी तरफ से जवाब नहीं देते। अल्लाह को सुनते हैं और अल्लाह देखते हैं, अल्लाह की सिफत बसीर है, तमीर है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में क्या सुलूक किया जा रहा है और क्या जो सवाल किया जा रहा है। तो रूह के बारे में जो सवाल किया तो फौरन अल्लाह ने इब्राहिम पर आयत जो है लेकर नाज़िल फरमाया कि नबी जी आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। फरमाया कह दीजिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह जो है मेरे रब का अम्र है, हुक्म है। जब तक कि अल्लाह का अम्र इंसान के जिस्म में रहता है, इंसान जो चलता फिरता है, हरकत करता है, और जब अल्लाह का अम्र निकल गया तो फिर इंसान जो है बेजान हो जाता है। मतलब दोस्तों लोग इस दावत और तबलीग के मेहनत का मकसद ही यही है कि हमारी निगाहें जो जाहिर पर और जाहिर को देखकर उसका यकीन जो हमारे दिलों में है, इसका यकीन दिलों से निकल जाए और अल्लाह तबारक वताला का जो दैवी निजाम उस पर यकीन आ जाए। जाहिर में नजर आता है कि हम खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, ठंडी बर्दाश्त करते हैं, अनाज डालते हैं, फिर उसको जो है हमवार करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, फिर उसको काटते हैं, खलिहान में डालते हैं, फिर उसको जो है मार्केट में ले जाते हैं, ये सारे मेहनत करते हैं, और उसके जो है इसके जरिए से हम भी पलते हैं, हमारे जो है बच्चे भी इसके जरिए से जो हमारा मांस का जो जरिया ये है। और इसी तरीके से इंसान मजदूरी करता है, तो मजदूर मजदूरी करने के लिए जब जाता है तो सुबह निकलता है, दिन भर अपने आप को थकाता है, पसीना बहाता है, और शाम को वापस आता है, कुछ मजदूरी लेके आता है, तो उसका यकीन ये बना है कि मैं मजदूरी करता हूँ, सुबह से शाम तक अपने आप को थकाता हूँ, तो इसके जरिए से जो मैं कमाता हूँ उसके जरिए मैं भी पलता हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी पलते हैं, मेरा काम करता है। दफ्तर में काम करने वाले वकील है, डॉक्टर है, जिस शोबे में इंसान जिंदगी गुजारता है, जाहिरी असबाब को भी अख्तियार करता है और नजर चुके यही आता है, तो उसका यकीन जो है इसकी नजर पर है, असबाब जाहिर पर है। और हर नबी को अल्लाह तबारक वतआला ने महबूस फरमाया और हर नबी ने इंसानों में तलबीर कर दावत दी, या कौम अब्दुल अल्लाह मालकुम लिल्लाह गैरु, कि मेरे कौम उस अल्लाह की बंदगी करो इसके अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक पसंद नबी बनाकर भेजा, सारे 900 साल तक मुसलसल यही दावत देते रहे, मखलूक से यकीन हटाकर खालिक से यकीन जोड़ो, चीजों से यकीन हटाकर आमाल से यकीन जोड़ो, दुनिया से यकीन हटाकर आखिरत पर यकीन लाओ। हमारे दावत जो है दुनिया में रहते रहते यकीन में फसाद आ गया, चीजों में फसाद आ गया, यकीन में फसाद आ गया। तो मतलब दोस्त बुजुर्गो, इस मेहनत के जरिए से जो नबी ने जो मेहनत की है और हर इंसान में चल फिर कर बाजारों में जाकर, मेलों में जाकर, घर घर जाकर, ہر نبی دعوت دیتے تھے, اور پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو ان کا دائرہ نبوت محدود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ محنت جو ہے ان کی قوم کی, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ان کے محنت کا ادارہ قوم شعیب مدین, تو مدین میں جو ہے دعوت کی محنت کرتے تھے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے خاندان میں محنت کرتے تھے. بذکر فی کتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. تو ان کا دائرہ محنت جو محدود ہوتا تھا, قوم ہوتی تھی, علاقہ ہوتا تھا, لیکن سب کے آخر میں ہمارے حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے پتہ نے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف قوم کے لیے نبی نہیں ہے, مکہ والوں کے نبی نہیں ہے, حجاز کے نبی نہیں, بلکہ آپ کو اللہ کے بارے پتہ نے رحمت للعالمین بنایا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہہ دیجئے نبی جی تمہیں تمہاری سب کی طرف میں رسول بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور سارے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. تو مطلب دوستو بزرگو, اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے, اس لیے کہ اللہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اور ساری مخلوق بھی اللہ کی عیال ہے, الخلق عیال اللہ, اور ہر ایک اپنے عیال سے تعلق ہوتا ہے. تو اللہ کو بھی اپنے عیال سے تعلق ہے, اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے, قبر میں بھی کامیاب ہو جائے, حشر میں بھی کامیاب ہو جائے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ چین والی زندگی گزارے. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے دولت کے لیے پر ایک عورت آئی اور سوال کیا, اور اس کے ساتھ میں دو بچے تھے. اس عورت نے کہا اللہ کے لیے کچھ دے دو, میں بھی بھوکی ہوں, میرے بچے بھی بھوکے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تین کھجوریں لا کر دی. ہماری طرح اسٹوک تو ہوتا نہیں تھا گھروں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات سیرت ہمارے سامنے, دو دو مہینے گزر جاتے تھے اور جو ہے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. تو تین کھجوریں جو لا کر دی, تو اس عورت نے جو ہے بچوں کے ہاتھ میں ایک ایک کھجور دی, بچے بھوکے تھے, ایک دم سے کھا لیا. کھا کر جو ہے ماں کی طرف دیکھنے لگے, جو ایک کھجور ماں کے ہاتھ میں تھی. تو ماں نے دیکھا کہ بچے بھوکے ہیں, تو اس نے خود نے نہیں کھایا, اس کے دو ٹوکرے کر کے دو بچوں کو دی. رسول اللہ نے فرمایا عائشہ دیکھا اس ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے. فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ, 70 گنا زیادہ محبت ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ جو میرے بندے کو تکلیف ہو. ما یقل اللہ بعذاب من شکر تو آنند وکان اللہ شاکر علیما, کیا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا نعمتوں کا شکر کرو, اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ تو بڑا قدردان ہے, ہر چیز کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. اسی محبت کے خاطر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا. نبی آتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ انسانوں اس دنیا کے پہلے شکلوں میں تمہاری کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں, اللہ کے دین میں. تم اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہر منزل میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے, دنیا کے منزل میں بھی کامیاب ہوں گے, قبر کے منزل میں بھی کامیاب ہوں گے, حشر کے جو منزل میں جو نظر نہیں آتی, ہمیں تو صرف دنیا کے منزل نظر آتی, حالانکہ وقتی ہے, اور آخرت کی جو منزل ہے وہ ابدی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی, کبھی بھی ختم نہ ہونے والی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں میں چل پھر کر اس بات کی محنت کی
इस बात की दावत दी कि तुम्हारी कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हुक्म के ताबे होकर जिंदगी गुजारने में रखी। दीन जो कहते हैं अल्लाह का अम्र और नबी का तरीका, इसका नाम दीन है। अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है और जिस जमाने के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की तरफ भेजा है उनके तरीके के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, मर्द हो, औरत हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अगर इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला हर हाल में उसको, हर शौबे में जो उसको कामयाबी अता फरमाएगा। मालदार है तो मालदारी में कामयाब हो जाएगा, गरीब है तो गुर्बत में कामयाब हो जाएगा, और दुनिया के किस शौबे में जिंदगी गुजारेगा, दीन को मुकद्दम करेगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो कामयाब होता चला जाएगा। ये दावत है और साफ ही दावत है कि दावत के मेहनत के जरिए से दीन हमारी जिंदगी में 100% आ गया। सिर्फ जो है चंद इबादतें नहीं, ये हमारी दावत पूरे दीन की दावत है। ईमान की दावत है, नमाज की दावत है, और कई जिक्र की दावत है, इकराम की दावत है, इखलास की दावत है, अल्लाह के रास्ते में जो है जान माल को खर्च करने की दावत है। ये जो छह सिफात जो है, इस सिफात के जरिए से कहा जा रहा है कि हमारी जिंदगी में 100% अल्लाह का दीन मुकम्मल तरह से आ जाए। दीन जिंदगी में होगा तो हम कामयाब हो जाएंगे, और दीन जिंदगी में नहीं होगा तो हर हाल में नाकाम होंगे। ये ऐसी बात है जैसे दो दो चार, किसी अनपढ़ से भी पूछो तो दो दो चार को पांच नहीं कहेगा कि दो दो मिलाकर जो है पांच होंगे या तीन होंगे। हर आदमी जानता है कि जो है चार ही होंगे। ये ऐसी बात है, जिंदगी में दीन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हर मंजिल में हर हाल में कामयाब फरमाएंगे। तंदुरुस्त है तो कामयाब, बीमार है तो कामयाब, अमीर है तो कामयाब, गरीब है तो कामयाब, मर्द है तो कामयाब, औरत है तो कामयाब। बस जिंदगी में दीन को जो है, जिंदगी में दीन को दाखिल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें इज्जत से नवाजेंगे और इंसान सुख रूह के साथ जिंदगी गुजारेगा। मतलब दोस्तों बुजुर्गों, अब दीन जो है, दीन पर चलना, ये अंदर की ईमान की ताकत होगी तो दीन पर चलना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ईमान बनाने की मेहनत, अंदर का यकीन सही हो जाए, दिल का यकीन सही हो जाए, दिल का यकीन मखलूक से हटकर अल्लाह की जात पर हो जाए, तिजारत से हटकर, ज़राअत से, मजदूरी से और दुनिया के असबाब से, या नफा नुकसान इन चीजों में नहीं है, ये अल्लाह के अम्र में है। इज्जत और जिल्लत ये अल्लाह के अम्र में, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हुक्म में। इसका यकीन जब दिलों की गहराई उतर जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर चलना ही आसान होता चला जाएगा। और जब यकीन कमजोर होगा तो मतलब दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के अम्र पर चलना ही कमजोर होगा। अगर यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पालते हैं, मुझे भी अल्लाह ही पालते हैं, मेरे भी बच्चे को अल्लाह पालते हैं, आज जो यकीन है अपने चीजों से बदलने का, मतलब दोस्तों बुजुर्गो, ये यकीन फासिद है। इस फासिद यकीन को पहले निकालना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें सबसे पहले जो है दिलों में जो फासिद यकीन जो है चीजों से होने का, इसको निकाले। इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह की जात होने का यकीन दिलों में बिठाना, दुनिया की सारी चीजें मिलकर अगर नफा पहुंचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो कोई नफा नहीं पहुंचा सकता, और दुनिया की सारी ताकतें मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो कोई जो है नुकसान और नफा नहीं पहुंचा सकता। ये ईमान सिखाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे सवार थे, तो आप अब्दुल्लाह अब्बास ईमान सिखाए, और आप सलाम जो उनको ईमान यकीन सिखा रहे। आज का मुसलमान कहता है हम तो मुसलमान है,
हमारे बाप दादा मुसलमान थे, सब मुसलमान थे, अभी हमें ईमान सीखने की क्या जरूरत? कलमा नमाज सीखने की दावत की मेहनत है। तो आदमी को जो ताज्जुब होता है कि ये तो हम तो जानते ही नहीं। दोस्त बुजुर्गो, एक ईमान जो है जबान के बोल है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरे बोल है, हकीकत नहीं, हकीकत कुछ और है। जैसे रसूलुल्लाह के जमाने में सन्देहाती आए, आपके पास में आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह ने ईमान लिया है, तो अल्लाह के बात करना आयत नाज़िल फरमाई, قال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وسلمنا। ये देहाती लोग आकर कहते हैं ईमान लिया है, आप कह दीजिए कि अभी तुम ईमान नहीं लाए, यूं कहो कि हम अभी मुसलमान हुए हैं और ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं है, तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये तो दावत मुजाहिदे के साथ में जितनी दावत दी जाएगी, अल्लाह की बड़ाई की, अल्लाह की अजमत की, अल्लाह से होने की, गैर से न होने की, इज्जत तो जिल्लत का मालिक अल्लाह तबारक ताला है, नफा नुकसान अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है, मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है, कायनात की सारी शक्लें अल्लाह तबारक ताला के मोहताज है, एक करने धरने में हर आन में अल्लाह के अम्र के मोहताज है, मौजूद होने में भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज, काबिल दिखाने में भी मोहताज, अपने बाकी रहने में भी मोहताज, अपने खत्म होने में भी मोहताज। ये आसमान का वजूद जो हुआ ये अल्लाह के अम्र से हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि आसमान और जमीन 7 दिन में बन जाए, तो 7 दिन में अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया, और सूरज जो है अल्लाह के अम्र से, अल्लाह के हुक्म से बना, ऑटोमेटिक नहीं बना। ये अल्लाह ने सूरज को पैदा किया तो अल्लाह तबारक तआला ने जो वजूद बख्शा, इसलिए सूरज अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के ताबे आजाद। जब सूरज निकलता है तो पहले अल्लाह के अर्श के सामने सजदा नहीं होता है, सजदा करता है और इजाजत चाहता है। जो अल्लाह का अम्र है कि मशरिक से निकल, तो सूरज मशरिक से निकलता है। जब अल्लाह का हुक्म होगा कि सूरज मगरिब से निकल, तो सूरज जो है मगरिब से निकलेगा, कयामत के करीब के जो है निशानी में से एक वक्त ऐसा आएगा कि सूरज जो है गुरु मगरिब की जगह से जो तुलू होगा, फिर एक दिन जो है एक साल के बराबर होगा, फिर एक दिन एक महीने के बराबर होगा, एक दिन फिर एक हफ्ते के बराबर होगा, और फिर बकिया दिन अपने दिनों के एतबार से होंगे। ये रसूलुल्लाह से सबकी खबर है। फिर उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। इसलिए कि ईमान जो हुआ जाहिर पर ईमान हुआ, ये इसने अपने आंखों से जो निशानियां देखी तो ईमान लिया, और अल्लाह के जो ईमान मोतबर, ईमान बिलगैब मोतबर, जो नजर नहीं आता और मानना है, नजर आता है कि चीजों से होता है, और यकीन करना है कि अल्लाह के साथ से होता है, नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में, करने करने वाली जात सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है। तो आप ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम पर जो यही ईमान सिखाया, तो मैं या बोला इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक, इहफ़ज़िल्लाह तजिद तुजान, ये बच्चे तो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह के अवामिर की तो हिफाजत कर, अल्लाह तबारक तआला तेरी हिफाजत करे। हमारी हिफाजत जो अस्बाब के ज्यादती में नहीं है, चीजों में नहीं है, हमारी हिफाजत जो है अल्लाह के दिल की हिफाजत में। अस्बाब इख्तियार करना मना नहीं, लेकिन यकीन हमारा अल्लाह की जात पर हो, अल्लाह तबारक तआला का दीन जिंदगी में होगा और अल्लाह के दीन की हम हिफाजत करेंगे। ईमान के अतबार से, इबादात के अतबार से, मामलात में, मुआशरत में, अखलाकियात में, हर चीज में अल्लाह तबारक तआला के दीन की रियायत के साथ में जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमारी हिफाजत फरमाएंगे, चाहे असबाब कम हो चाहे असबाब ज्यादा हो, चाहे चीजें कम हो चाहे चीजें ज्यादा हो, चाहे नफा की शक्ल हो चाहे नुकसान की शक्ल हो, अल्लाह तबारक हर हाल में जो कामयाब करते चले जाए। ये फरमाया फजलिल्लाह याफज, आज अल्लाह के दीन को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, नमाज कदा हो रही, अल्लाह को कितना अमर अजीम है नमाज, तो जिसको ईमान की अलामत बताया, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में फर्क करने वाली चीज है तो नमाज है, उसको छोड़कर गया अपनी हिफाजत चाहते हैं मुस्लिम दोस्त बुजुर्गों, कैसे हमारी हिफाजत हो सकती? हमारी हिफाजत अल्लाह के दीन की हिफाजत, حفاظت
کر ہر جگہ اللہ کو پائے گا, اللہ کی مدد کو بھی دیکھے گا, اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اپنے خواہشات سے نکلنا ہے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے چلنا ہے. طبیعت چاہے طبیعت نہ چاہے, جی مانے نہ مانے, نفع نظر آئے نقصان نظر آئے, لیکن اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. اس کا یقین جب ہوگا تو مطلب دوست بزرگوں اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایمان سکھایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامل کی حفاظت کرے گا, اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہو جائے گی, اور اس بات کا یقین کر کے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں, اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا, اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں, اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. روپیہ بلا کلام وزن پرتے سنو قلمیں جو اٹھا لی گئی اور طریقے خود کو یہ یقین بنا رہا ہے. دعوت کی محنت صرف جو ہے کہ چار مہینے چلے اور گشت اور مقام دام, یہ سارے محنت کا گئے ایک ہی خلاصہ ہے کہ آج جو دنیا میں ظاہر اسباب میں رہتے رہتے جو ہمارا یقین میں جو بگاڑ آ چکا ہے اس یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہے, اور ایمان میں قوت لانے کی محنت ہے, ایمان میں طاقت لانے کی محنت ہے. آج محنت لانے کی وجہ سے ایمان میں اتنا ذوق آ گیا کہ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کو کہتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا منادی سے پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر, مجھے مطلب دوست بزرگوں وہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے, اپنے کھیتی میں مشغول رہتا ہے, اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے, زبان تو کہتا ہے اللہ اکبر لیکن دل میں جو ہے دکان اکبر نعوذ باللہ, دکان بڑی ہے دل میں, اگر دکان کے بڑے ہونے کا یقین نہ ہوتا اور دکان چھوٹی ہے اس کا یقین ہوتا, دکان کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتا, لیکن کیونکہ دل کا یقین بگڑا ہوا اس لیے پانچ وقت نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. کل جو فرصت ملے تو نماز پڑھ لی, فرصت نہیں ملے تو نماز کو چھوڑ دیا. اس لیے مطلب دوست بزرگ ہو اس دعوت کی محنت کا کیا مقصد ہے, سب سے پہلے بنیادی جو محنت ہے یہ یقین کو ایمان کی بنانے کی محنت ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, سب سے کہتے ہیں جماعت میں نکلو, امیر ہے وہ بھی نکلے, غریب ہے وہ بھی نکلے, حاکم بھی نکلے, اور جو ہے وزیر بھی نکلے, ڈاکٹر بھی نکلے, وکیل بھی نکلے, ہر ایک سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. فرمایا خدا کی قسم نہ ملک چاہتا ہوں نہ مال چاہتا ہوں نہ عہدہ چاہتا ہوں, صرف میرا مقصد یہ ہے اس نکلنے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر آپ چھوڑ کے تشریف لے گئے تھے دوبارہ وہ امت اس دین کے سطح پہ آئے, پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے, عبادت کا دین, معاملات کا دین, معاشرت کا دین, اخلاقیات کا دین, ہماری شادی بیاہ کیسے ہو, ہمارا لین دین کیسا ہو, ہمارا رہن سہن کیسا ہو. یہ اس وقت ہوگا جب ایمان میں قوت پیدا ہو, ورنہ آدمی ماحول سے متاثر ہو جائے, آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے. جیسے ابھی سردی ہے تو سردی کا ماحول ہر ایک کو سردی لگے گی, بادشاہ ہے تو بادشاہ کو بھی سردی لگے گی, غریب ہے غریب کو بھی سردی لگے گی, گرمی ہے سب کو گرمی لگتی ہے, ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے. تو مطلب دوست بزرگ ہو اس دعوت کے محنت کے ذریعے سے جو غلط ماحول ہے اور غلط یقین کا جو ماحول ہے, محنت کرتے کرتے غلط یقین کا ماحول دلوں سے نکالنا ہے اور صحیح یقین کو جو ہے دلوں کے اندر بٹھانا ہے کہ کرنے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنے کرنے میں کسی کا سہارا کی کوئی ضرورت نہیں, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا شریک لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شادی نہیں, اللہ کو کوئی یار و مددگار نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا سب کچھ کرنے پر قادر ہے.
वो हमारे कुल का मालिक है, वो फरमाए हो जा तो उसी उसी पे आ जाती है, नमा अमर हो इधारा दशहन या पूर्ण लो कुल पैम हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तदबीर की जरूरत नहीं है, असबाब की जरूरत नहीं है, ये असबाब तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब का इनकार नहीं है, लेकिन असबाब में रहते हुए मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह के जात पर यकीन पैदा करने की मेहनत है। दुकान को छोड़ने के लिए दावत नहीं है हमारी, एक बात खेती बाड़ी को छोड़ने की दावत नहीं है, चीजों को छोड़ने की दावत नहीं है, ला रब्बानी तो फिर इस्लाम, इस्लाम में मलक बना नहीं है, लेकिन असबाब में रहते हुए हमारा दिल का यकीन रुख जो है मखलूक से चीजों से हटकर अल्लाह के दर पे आ जाए, इसलिए जितने हम दावत देते चले जाएंगे उसका यकीन हमारा सही होता चला जाएगा। सारी दुनिया की सारी चीजें छोटी है, अल्लाह तुम्हारा पता के जात जो बड़ी है, अल्लाह अकबर, इसलिए जो है बार बार इस जुमले को अल्लाह अकबर को बार बार कहलवाए। सबसे पहले आज तबलीग की दावत के लाएंगे जो आए या जो मुद्दतर कमरे उड़ने वाले खड़े हो जाइए, डराइए और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिए, दिलों में अल्लाह की बड़ाई आ जाए और दुकानों की बड़ाई निकल जाए, कारखानों की बड़ाई निकल जाए, फैक्ट्री की बड़ाई निकल जाए, चीजों की बड़ाई निकल जाए, असबाब का तासुर दिलों से निकल जाए, अल्लाह बढ़े। इसलिए बच्चा जो दुनिया में आता है तो सबसे पहले कि हमारी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि उसके कान में अजान दूसरे कान में जो इकामा पड़ गया, अभी से उसके बच्चा है तासुर नहीं है, लेकिन उसके कान में अभी से अल्लाह की बढ़ाई डालो, फिर तो बच्चा जो दुनिया में आया है बड़ी बड़ी चीजें जो है तो तुझे नजर आएगी, लेकिन ये सारी चीजें छोटी है, अल्लाह की जात बड़ी है, आसमान छोटा है अल्लाह बड़े हैं, जमीन छोटी है अल्लाह बड़े हैं, पहाड़ छोटे हैं अल्लाह बड़े हैं, समंदर छोटा है अल्लाह बड़े हैं, और दुनिया की सारी ताकतें जिब्राइल छोटे हैं अल्लाह बड़े हैं, मिकाइल इजराइल इसराफिल सारी की सारी चीजें छोटी है अल्लाह ऊपर अल्लाह की जात बड़ी, इसका यकीन दिलों की गहराई में आ जाए। इसलिए मुअज्जिन के सबसे पहली आवाज अल्लाह अकबर, आखिर के अंदर फिर भी जो दो बार अल्लाह अकबर कहलवाए, जब नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर से जो नमाज शुरू करते, जब रुक में जाओ तो अल्लाह अकबर और जब सजदे में जाओ तो अल्लाह अकबर, सजदे से उठो तो अल्लाह अकबर, ये बार बार इसकी तकरार का मकसद ये है ताकि इतना अल्लाह की बड़ाई को बोलो, इतना बोलो, इतना सुनो कि अल्लाह की बड़ाई दिलों की गहराई में उतर जाए और इसकी हकीकत दिल में आ जाए, दिमाग की हकीकत दिल में आ जाए, सिर्फ जबान के बोल न रहे। हज़रत माज रजी अल्लाह ताला, हज़रत हारिस रजी अल्लाह ताला, उनसे रसूलुल्लाह ने पूछा था कैसे बात बात है या हारिसा, कि कैसे तुमने सुबह किया हारिसा, हज़रत हारिसा रजी अल्लाह फरमाया अस्बाद मुमिन हत्ता या रसूलुल्लाह, सच्चा पक्का मोमिन बन के मैंने सुबह किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमसे अगर पूछते तो हम तो यही जवाब देवे थे जैन नींद अच्छी आ गई, मच्छर वच्छर काटे, लेकिन साहबा जो आपके रसन के मंशे को जानते थे कि हर वक्त जो है ईमान का ही फिक्र रहता था, सुबह उठते ही फौरन ईमान का फिक्र कि हमारे यकीन का क्या कैफियत है, हमारे अंदर की क्या कैफियत है, तो मंशा समझ गए तो फौरन जवाब यही दिया या रसूल सल्लम सच्चा और पक्का मोमिन बनकर मैंने सुबह, तो आपने फरमाया बात बिल्कुल लकौल हकीकत पमा हकीकत मा तकौल, हर बात की एक हकीकत होती है, तुम्हारी बात की क्या हकीकत है, क्या दलील है कि तुमने सच्चा पक्का मोमिन बनकर सुबह, तो जवाब दिया अजस्त नफ्सी यानी दुनिया, मैंने अपने आप को दुनिया से दूर रखा, मैं दूर रहा दुनिया से, वसाहित तो लयाली और रात में बेदार रहा और दिन में प्यासा रहा यानी रोजे की हालत में रहा और रात में अल्लाह के सामने जाकर अल्लाह तबारक तआला के सामने रोना रोया और किस हाल में मैंने सुबह की कि गोया के मैं अल्लाह के अर्श को देख रहा हूं, बकाने अंदर लाल कर दिए मेरा रब का अर्श उसको देख रहा हूं और मैं इस हाल में मैंने सुबह की कि जन्नती जो है वो जन्नत में उनको इस्तकबाल किया जा रहा है, उनको दाखिल किया जा रहा है, वो खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। सलाम किया जा रहा है, सलाम अलैकुम तुम फदखलू आ खालिदीन, जन्नत जब जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते सलाम करेंगे, हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मैं देख के मंजर के मेरे सामने रहता है कि जन्नत के खुशी खुशी जन्नत में जा रहे हैं और जहन्नमी इस जहन्नम में उनको जो है धकेले जा रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। तो आपने फरमाया अरब का फल दे, तूने ईमान की हकीकत को पहचान लिया, अब उसमें से मजबूत कैसे जमा रहे, ये ईमान की हकीकत। उसके ईमान की हकीकत की निशानियां भी बताई, हकीकत ईमान की अलामतें क्या है, इरा तगत का हसनत होगा वेरा आता आपका सही हो तो अंतम हो, जब नेक काम करो तुम्हें खुशी हो और जब गुनाह हो जाए तो तुम्हें रंज हो, तो समझो कि तुम मोमिन हो। नेक काम करने के बाद में आदमी में फरहत हो, नमाज पढ़ी अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने नमाज पढ़ने के तौफीक अता फरमाई, फजर में जो आँख खुली नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करो, सदका दिया ज़कात अदा की, मुझे अल्लाह के बारे में शुक्र अदा करना, खुशी हो कि अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। और बच्चे होने की तकाजे से अगर कोई गुनाह हो गया तो मतलब दोस्त बुजुर्गो उसमें दिल में रंज हो, नदामत हो, शर्मिंदगी हो, तो फरमाया कि इंसान से गुनाह तो हो जाएगा, अम्बिया सलाम मासूम है और साहबे कराम सलाम महफूज है और बातें इंसान तो जो है सारे के सारे जो गुनहगार हैं, वखैर तवाबून, तुम सब सब गुनहगार हो और बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करने वाला। इसलिए मतलब दोस्तों बुजुर्गो ये दावत के मेहनत से इस ईमान की फिजा को बनाना है, ईमानी फिजा बने और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर चलने के जो है एक माहौल बने। माहौल होगा तो दिन पर चलना आसान, रमजान में माहौल होता है, ये हमारे इज्तिमा का माहौल है अभी माशाल्लाह, कितना दुरानी माहौल है, यह आदमी की तबीयत जो है ये अच्छे आमाल की तरफ चलेगी, यह आदमी जो गुनाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, इसलिए दिन का माहौल है। रमजान के महीने में माहौल होता है तो आदमी जो है शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, दुआ करने वाला दुआ छोड़ देता है, टोपी न पहनने वाला टोपी पहन लेता है और कुरान की तलावत जो है की जाती है, मस्जिद आबाद हो जाती है, मोहल्ले का माहौल जो है इजीली बन जाता है इस माहौल। लेकिन जहां रमजान गया, ईद का चांद नजर आया तो फौरन जो है आदमी की टोपी भी जेब में चली जाती है, नमाज सजा हो जाती है, दो तीन दिन के बाद में फजर की नमाज की सफेद देखो, रमजान में जो फजर की नमाज में कितनी सफे होती थी और गैर रमजान में कितनी सफे होती है, ये नमाज की सफों में जो फर्क पड़ जाता है कि माहौल का दिन। और इस दावत के मेहनत के जरिए मतलब दोस्त बुजुर्गो इस ईमान में ऐसी पुख्तगी पैदा करना है, ऐसा यकीन बनाना है कि आदमी जिस माहौल में चला जाए माहौल से मुतासर न हो बल्कि माहौल को मुतासर करने वाला बने, हम माहौल को बदलने वाले बने, माहौल में हम तब्दील ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह की दावत के मेहनत के जरिए अल्लाह ने तब्दीली पैदा फरमा दी, पहले जो है बुरके नहीं थे, औरतों में जो है बुरका कोई पहनता था, कोई पहनती थी तो जो है जो हंसते थे, हमारे अहमदाबाद में और जो शहरों में तो खूबसूरत जो है पहले कोई माहौल ही नहीं था, लेकिन जो है अब ऐसा माहौल बन गया कि जो है मसूरात में अल्लाह ने दीन की फिजा बना दी, नमाज का जो है इतना माहौल नहीं था, इतनी मस्जिद आबाद नहीं थी, अब दावत की मेहनत का ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह नमाजी मिलेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद में भी आप सफर में हैं तो पहले मुसाफिर आदमी के मुसाफिर हैं, घर जाकर नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन स्टेशनों पर नमाज हो रही है, ट्रेनों में नमाजें हो रही है, हवाई जहाजों में नमाजें पढ़ी जा रही है, एयरपोर्ट पर नमाजें पढ़ी जा रही है, एक माहौल बना, दावत के मेहनत के जरिए से माहौल बनता है जिसके दीन पर चलना ही आसान होता चला जाता है। और दावत की मेहनत नहीं होगी, हम सब इबादत और सिर्फ हम नमाजें, ये तो फर्ज है, उसको करना ही करना है, लेकिन हम अपनी इबादत पर जो है मुस्तकिल साबित नहीं रह सकेंगे जब तक के जो है माहौल नहीं होगा, दीन का माहौल नहीं होगा। दीन का माहौल होगा तो शादियां करना भी जो सुन्नत के मुताबिक आता हो जाएगा। आज दीन का माहौल देखो हमारे इस्तेमाल में जो शादियां सुन्नत तरीके से हो जाती है, कितना आसान हो गया, वरना किसी के वहां शादी होती है तो बेचारों को कई साल पहले उसकी जो नींद उड़ जाती, कर्ज लिए जाते हैं और जो उसके लिए सारी मेहनत की जाती है और शादी को जो है इतना भारी कर दिया कि फिर जो सूद लेने पर मजबूर हो जाता है, फिर उसकी नींद जो खराब हो जाती है, इसलिए कि माहौल नहीं। और जिस कौमों में माहौल है तो आसानी से शादियां हो जाती, कोई जो है रस्म रिवाजात नहीं। मौ मुसर आपसे फरमाते थे एक कई जगह जो नाक कटे हुए बैठे थे, छह सात बैठे होंगे, तो एक जो है नाक वाला आ गया, तो जिनके जो नाक कटे हुए तो सब उस पर हंसने लगे और कहने लगे नक्कू आया नक्कू आया नक्कू आया। भाई नाक होना आए हुए या बेनाक होना आए हुए? बेनाक होना आए हुए, लेकिन माहौल से बेनाक वालों का है। तो अब नाक वाला आया तो जो उसको शर्मिंदा किया जा रहा है, तो दिनदार आदमी जो है अगर माहौल में नहीं होगा तो उसका दीन पे चलने में उसको शर्म महसूस होगी। आदमी जिस माहौल में बाहरी जगह ऐसी जगह चला जाता है कि जहां माहौल नहीं होता तो आदमी उस माहौल से मुतासर हो जाता है। फिर मतलब दो बुजुर्गो इस मेहनत के जरिए से हमें जो है दावत और दावत दो चीजें हैं, कुर्बानी दो चीजें हैं, दावत और कुर्बानी की सिर्फ दावत है, खाली दावत से काम नहीं चले। दावत और कुर्बानी के साथ जीते हम दावत देते चले जाएंगे, अल्लाह के बड़ाई को बोलते चले जाएंगे, अल्लाह की आजमत को, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह से हमें को गैर से न होने को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ही कामयाबी है, आपके तरीके के अलावा दुनिया में जितने तरीके हैं वो माफी है, वो नाकामी की तरफ ले जाने वाले, चाहे मुजरियन मॉडर्न तरीके क्यों ना हो, लेकिन कामयाबी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके में। इसकी हम दावत देते चले जाएंगे तो आप सबको सुन्नतों की मोहब्बत हमारे दिल में आएगी और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये आसान होता चला जाएगा। फिर आदमी माहौल से मुतासर नहीं होगा। साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दावत कुर्बानी के साथ में जिंदगी गुजारी तो उनका ईमान इतना मजबूत हो गया था कि जो अल्लाह अकबर कहते तो उनके अल्लाह अकबर कहने की वजह से तीसरा केसर की दीवारों के अंदर जो लर्जा आ जाता वो हकीकत थी, वो बोल नहीं थे, वो किसी से मुतासर नहीं होते थे। बादशाह के दरबार में गए और दरबार खड़ा है सांस रोके हुए ऊंचा लंबा तक, और जो इसको इस तरह था बवाब को जो दरवाजे पर जो खड़ा किया जाता है, और जब दाखिल हुए तो कहा कि ये पत्थरों की तरह की तस्वीरें जो होती इस तरीके से क्यों खड़ा है, ना नफा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते, तो मुतासिर ऐसे से दाखिल हो गए। और बात जब दरबारी ने जो कहा कि आप इस तरीके से नहीं जा सकते, आप जो है घोड़े पर बैठ के नहीं जा सकते, टट्टू पर बैठ कर हम आए हैं, आपका लिबास जो इस लिबास के साथ नहीं जा सकता, आपको लिबास बदलना होगा, आपको यहाँ हमारा शाही लिबास पहनना होगा और इसके मुताबिक आपको चलना होगा। करोगे तो हम तो वापस चले जा रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं बादशाह से मिलने। लेकिन उनके दिलों में बादशाह का तासुर नहीं था, और जो बादशाह को इतला दी तो बादशाह ने कहा आ रहे हो, अब उसी हालत में जो है पिट्टू पर जा रहे हैं, छोटी सी तलवार है और जो चितड़े में लपेटी हुई है, तो बादशाह के और चीरते हुए बादशाह का फर्श जो है बड़े बड़े महल के
और जो फर्ज जो है जमीन नजर आई तो कहा के मेरा मेरे अल्लाह का जो जमीन कितनी अच्छी ना मेरे पैर भर सकते नजर कट्टू के पैर भर सकते और आसानी के साथ में जो है मैं चला जा रहा और बादशाह के पास में जाकर उसके तख्त पर जो है पास में जाकर बैठे और उसके गांव पति के साथ में जो है अपने कट्टू को बांध दिया और सारे दरबारी जो है ताज्जुब करने के कौन है तो कह रहे हैं इसमें क्या ताज्जुब की बात है मेरे यहां पर बैठते थे तो मेरी इज्जत बढ़ी नहीं और तुम्हारे बादशाह की इज्जत कोई घटी नहीं तो बादशाह ने पूछा क्यों आए हो तुम्हारा क्या मकसद है तो फरमाया कि असल तकलीफ ईमान ले आओ महफूज रहो इस्लाम में दाखिल हो जाओ सलामत रहो दंगे की सूट दावत दे रहे हैं जरा भी तासुर नहीं माहौल से मुतासिर नहीं वो हकीकत वाला ईमान है वो दिल का रुख अल्लाह दिल का रुख अल्लाह की तरफ है अल्लाह ही से मुतासिर अल्लाह के गैर से मुतासिर नहीं अल्लाह की बड़ाई दिलों में उतरी हुई है अल्लाह की अजमत दिलों में उतरी हुई तो बादशाह ने कहा अगर हम इस्लाम न लाए तो कहा आपको जिजिया देना होगा टैक्स देना होगा जिजिया ये भी दावत है वो दावत की तफसीली है कि तुम हमारे साथ में रहोगे हमारे अखलाक को देखोगे हमारे आमाल को देखोगे हमारे दिन रात दिन के जो माहौल को देखोगे और तुम्हारी बात जो समझ में आ जाएगी कि ईमान इस्लाम क्या चीज है तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा इसलिए कि कुफ्र की हालत में तुम जो बलन होकर सर बलन होकर नहीं रहते फरमा अगर हम जिजिया भी नहीं दें तो फिर फरमाया किसरे में जो लपटी हुई तलवार निकाल देगी तो फिर ये है फिर इससे जो है मामला होगा तो मतलब दोस्तों बुजुर्गो ये ईमान की कुव्वत की अलामत है फिर यही दावत थी कि अल्लाह ने हमको भेजा है हम आए नहीं अल्लाह ने भेजा है ये उम्मत मबूसा है उम्मत भेजी गई है पहले उम्मत इबादत के लिए पैदा की थी अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को दावत के लिए पैदा किया हरेक के पास में जाकर दीन की दावत दे ईमान की दावत दे नमाज की दावत दे अल्लाह के अहकाम की दावत दे रसूलुल्लाह सल्लम को सुन्नत तरीके की दावत दे रसूलुल्लाह के तरफ जो है बाजार में जाकर दावत देते थे लोग आपको मजनून कहते थे ताहिर कहते थे और जो है ताहिर कहते थे लेकिन आप हरेक के पास में जाकर बराबर दावत देते तो हमारी दावत सिर्फ जो है एक जगह बैठकर नहीं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर के दावत दी हरेक को दावत दी रात में दावत दी दिन में दावत दी खलवत में दावत दी जलवत में दावत दी मजमे में दावत दी इत्रादी तौर से दावत दी तो हमारा जिंदगी का मकसद अल्लाह की दीन की दावत है और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है तो सहाबा ये कहते हैं अल्लाह ने हमें भेजा है ताकि बंदों को बंदूक के गुलामी से निकाले अल्लाह तआला ने लिखो प्रजे इबाद मिन इबाद फिर इबाद इला इबाद रब्बिल इबाद बंदूक के बंदगी से निकाल कर बंदूक के रब के बंदगी की तरफ से हम दावत दे रहे हैं अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत दे रहे हैं और दुनिया के तंगियों से निकाल कर आखिरत की उसत की तरफ दावत दे रहे हैं हमने देख दुनिया इला सिरात किया दुनिया की सिरात की तरफ दुनिया के उसत की तरफ दावत दे रहे हैं यानी इस दीन के अंदर इस्लाम के अंदर सिर्फ आखिरत की उसत नहीं है यहाँ दुनिया में भी अल्लाह तबारक तआला वसत अता फरमाएंगे कि दीन को जैसे अल्लाह तबारक तआला दुनिया भी बनाएंगे आखिरत भी बनाएंगे ताकि तुम लोग जो दुनिया की तंगियों में तुम पड़े हो चाहे जाहिरी असबाब कितने अच्छे तुम्हें नजर आते हैं लेकिन तुम्हारे दिलों में तंगियां हैं मायशतन दंग का अल्लाह के फरमाते हैं मन आरदान जिक्री फैंदना मायशतन दंग का जो अल्लाह के दिन से मुंह मोड़ कर जिंदगी गुजारेगा हम उसके दिल उसकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे जब बात अमेरिका गई थी तो उन्हें कागजारी सुनाई कि मेडिकल में वहां सबसे ज्यादा नींद की गोलियां मिलती हालांकि दुनिया के एतवार तरफ ही आपका मुल्क समझा जा रहा है लेकिन इनके अंदर की जो सुकून जैन खत्म है नींद नहीं आ रही और गोलियां वो लेते हैं कुछ नशा सा जैसा हो जाता है और उसको कहते हैं कि हमको जो नींद आ जाए मतलब देखो राहत और है असबाब राहत और है असबाब राहत से राहत नहीं मिलती
راحت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہی میں رکھی, اللہ کے عوامر میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. جو ہماری زندگی میں اللہ کے عوامر ہوں گے, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی سنواریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر بھی بنائیں گے, اور دنیا کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. ایک تو کثرت, ایک برکت. کثرت تو اللہ غیروں کو بھی دے دیتے, دنیا بھر کے جو کثرت, لیکن مطلب دوست بزرگوں دلوں کا چین ختم نہیں ہوگا. بلما نسو معذوب کی روبے فتح عالم ابوا بک اللہ سے, جب اللہ کو انہوں نے بلا دیا, اللہ کے احکام کو بلا دیا, خواہشات والی زندگی گزاری, رب چاہی زندگی نہیں گزاری, دنیا کے ماحول سے متاثر ہو کر زندگی گزاری. اللہ کو فرماتے کہ ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دی, پر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کتنی مدت حاصل ہوگی, میں کامیاب ہو گیا. فرماتے ہیں پھر ہم دھیر کے اللہ ہماری طرف سے دھیر ہے, پھر اچانک ہماری پکڑ آ جاتی ہے, اخذ نہ ہو بغتتن فیضا مبلسون, پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو حیران رہ جاتے ہیں. جیسے فرعون ہے, فرعون یہی تو دعویٰ کرتا تھا, انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا بڑا رب ہوں. 500 سال تک جو اس کے سر میں درد نہیں ہوا, یہ اللہ کی طرف سے دھیر تھی. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی, جب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لیا تو فرشتے نے جو کیچڑ منہ میں, جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ منہ میں ٹھوس دیا اور کہا اب ایمان لاتا ہے, دیکھ کر ایمان لاتا ہے. ایمان بالغیب معتبر, ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں, دیکھا اور ایمان معتبر نہیں. ہم جتنے ہم دعوت دیتے چلے جائیں گے ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, ہمارے اخلاق اچھے سے اچھے ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, آپ نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق, جو لوگوں کو جو دشمنوں اور جو لوگ آپ کو جو تکلیف دینے والے تھے اور کیسے کیسے تکلیف آپ کو دی گئی, لیکن آپ نے ان سے وہ اخلاق برتے کہ جو ہے وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے, وہ بھاگے جا رہے ہیں, مکہ کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. آپ دراصل آدمی بھیج رہے ہیں اور ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ آپ کو بہت ستایا, بہت آپ کو تکلیف پہنچائی, فکرواد نے بھی جہل اور وحشی نے آپ کو آپ کی کیسے تکلیف پہنچائی. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے کان کاٹے گئے اور جو ہے ناک کاٹا گیا اور جو ہے کلیجہ نکالا گیا, اس کو چبایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رونے میں آواز نکل گئی اور جو ہے صحابہ بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا پہ رونے والے کوئی نہیں, تو مدینہ کی عورتیں آ گئی رونے لگی. تو آپ کو اتنا صدمہ تھا, لیکن اس وحشی کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دیا کہ وحشی سے کہو کہ ایمان میں داخل ہو جائے تاکہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے. ایسے جو ہے حاتم جو چچا کے جو ہے ایسے چچے, چچا ہاتھی کے چچا, اور آپ کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ بڑی محبت تھی, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت تھی. جب ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت میں جو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, شکار کر کے واپس آئے تو پتے نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے جو ہے بہت ستایا, تو فوراً جو ہے گھر جانے سے پہلے ابو جہل کے پاس جا کر اس کو ایک تباہ مارا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ تم نے ایسا جو ہے ایسا معاملہ کیا. پھر بعد میں ایمان میں داخل ہوئے تو وہ چچا کے ساتھ میں جس طریقے سے جس نے معاملہ کیا ہو تو دل کے اندر کتنی عداوت, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ میرا امتی ہے کہ جہنم سے بچ کر کس طریقے سے جو ہے جنت میں داخل ہو جائے. وحشی کو بلایا, وحشی آئے تو وحشی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ جس نے شرک کیا ہو, جس نے زنا کیا ہو, جس نے قتل کیا ہو تو جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور میں نے سارے گناہ کے کام کیے, شرک بھی ہوا ہے, زنا بھی ہوا ہے, قتل بھی ہوئے, میں ایمان میں داخل کر دیا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ تبارک پتہ تو سن رہے ہیں, فوراً اللہ تبارک نے آیت نازل فرمائی, اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
इसने इतने बड़े बड़े गुनाह किए लेकिन तौबा कर लिए, ईमान ले आया और अच्छे अमल किए। तीन चीजें बताई, आमना दिल का यकीन सही करना, अमल सालिह बदन से निकलने वाले अमल जाहिर जो है वो सही हो, उसका इस्तेमाल सही हो जाए। इल्ला मन ताब व आमन व अमल सालिह, उसके अखलाक जो है सही हो जाए तो अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाह को नेकी से तब्दील फरमा देते हैं। वैसे जो है शिकायत तो बड़ी कड़ी सकते हैं, ईमान लाना, हमले ताले करना, इल्ला मन ताब व आमन व अमल सालिह तौबा करना, फिर तुम उससे जो कैसे अदा होगा कि तौबा भी करूं, ईमान भी लाऊं, हमले ताले भी करूं, तो कर ही सकते हैं। अल्लाह तबारक में दूसरे आयत नाज़िल फरमाए कि अल्लाह तबारक मतलब चाहेंगे तो जो है माफ फरमा देंगे, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अश-शिर्क वला यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, शिर्क के गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेंगे। अब जो के ईमान में दाखिल हो गए हैं तो अल्लाह तबारक तआला शिर्क के अलावा सारे गुनाह को माफ फरमाए। तो वैसे कहने लगे ये भी अल्लाह के मशीयत पर मौकूफ है, अल्लाह कहते हैं कि जो है अल्लाह चाहेंगे तो माफ फरमाएंगे, और मुझे क्या मालूम कि अल्लाह चाहते कि नहीं चाहते। फिर तीसरे आयत अल्लाह तबारक तआला नाज़िल फरमाए قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, कि नबी जी मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है अल्लाह के रहमत से ना उम्मीद ना हो, इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह तबारक पत्रा तमाम गुनाह को माफ करने वाला है, इन हुवल गफूर रहीम। तो फिर ऐसे कहने लगे हाँ अब मैं तेरे ईमान ले आता हूँ और कलमा पढ़ा चलो ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये आपके सन का अखलाक अखलाक तुझे दीन फैला है। आपने कहते बैठी जब तुम मजलिस में आओ तो मेरे सामने बैठा करो, तुमको जब देखता हूँ तो मेरे चचा की याद ताजा हो जाती है। लेकिन इनके लिए भी जो है आपसे संग तमन्ना है कि जहन्नम में न जाए और जो है जन्नत में दाखिल हो जाए। आपने फरमाया मेरी मिसाल तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि तुम दौड़ कर जहन्नम की तरफ चले जा रहे हो और तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर जो है तुम्हें जन्नत की तरफ ले जा रहा हूँ। दावत मेहनत यही है, अल्लाह के बंदे जो गफलत में है, गुनाहों में है, शिर्क फुजूर में है, गलत माहौल में है, जुल्मत अंधेरे में है, उनकी जिंदगी में नमाज और जो है नमाज रोजा ज़कात हज और अल्लाह के अहकाम रसूल अल्लाह के सुंदर तरह से नहीं, और जब दावत की मेहनत नहीं है तो वहां लोगों को कलमे के अल्फाज भी याद नहीं। ये तो जमात जोन की अभी जो कारगुजारी हो रही, ऐसी जगह जमात अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करती है जहां ना मस्जिद है ना मदरसा है। घर ईमान वालों जो अपने को जाहिरन जो कहते हैं मुसलमान है लेकिन कुछ भी नहीं जानते, उनके घरों में सारी चीजें मौजूद है लेकिन अल्लाह तबारक तआला का एहसान है कि इस मेहनत के जरिए से अल्लाह तबारक तआला उन्हें दीन की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं और ईमान की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं और उनके माहौल को अल्लाह तबारक तआला जो है तब्दील कर रहे हैं। दावत की मेहनत में हम सबको बुजुर्गों अल्लाह तबारक तआला ने ताजीर रखी, बड़ी जबरदस्त कुव्वत ताकत रखी। बाद में जाहिरी अस्बाब तो कम थे, अस्बाब की एहतियात करना मना नहीं लेकिन अस्बाब पर एतमाद करना मना है। हम एतमाद नहीं करेंगे, एतमाद सिर्फ अल्लाह के ज़ात पर होगा, लेकिन इनके पास में ईमान की कुव्वत थी, ईमान की ताकत थी, इनके पास में वो अखलाक थे, इनके अखलाक को देख देख कर जो है लोग ईमान में दाखिल होते थे। इतने मतलब दोस्तों ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने जिनको फसाद के जमाने में ये मुबारक मेहनत हमें अता फरमाई है और जो पूरी दुनिया में मेहनत हो रही है, मकान एतबार में मेहनत हो रही है, अंदरून के एतबार में मेहनत हो रही है, जमात अल्लाह के रास्ते में पैदल भी चल रही है, ये पैदल सारी जमातें जो चल रही है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और 20-40 किलोमीटर तो पैदल अल्लाह के रास्ते में जाते और पैदल चलने वाले ये नहीं कि जो है गरीब लोग हैं। साउथ अफ्रीका में जो पैदल जमाते थे और जिनके घरों के सामने जो हर फर्द की जो एक गाड़ी होती, घर में जितने मेंबर हैं मेंबर के हर एक के पास में एक एक गाड़ी है लेकिन वो पैदल चल रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जो है कुर्बानी दे रहे हैं। उस पैदल चलने पर अल्लाह तआला क्या अजर देंगे और उस पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ईमान में जो तरक्की अता फरमाए। इसलिए तो फरमाया एक बहुत साहब सच बुजुर्ग थे, जो मैं देख रहा हूं कि अल्लाह का अजाब कहर जो मेहर से बदल रहा है, अल्लाह का गुस्सा जो है अल्लाह की रहमत से बदल रहा है। तो फरमा के तुम्हारी पैदल जमातें जो चल रही है, इस पैदल जमात को कुर्बानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को जो तर्स आया कि अल्लाह तबारक व तआला जो अभी मेहरबान है उम्मत पर, इसलिए अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है मतलब दोस्त बुजुर्गो, ये बड़े कीमती जिंदगी है। ये दुनिया तो ये धोखा है, यहाँ की इज्जत धोखा है, यहाँ के कामले भी धोखा है, ये धोखा मौत पर खुल जाएगा। ये दुनिया का मैंने सबसे किसने किया, अल्लाह ने किया, वो अल्लाह तबारक खुद खबर देता है हमारे हयात दुनिया अल्लाह बताओ गुरू। ये दुनिया जो है धोखे का सामान है और धोखे से हम निकले, मौत पर आदमी धोखे से निकलता है तो उस वक्त खुद के आंसू शुरू होता है और कहता है रब्बना वसलना वसमियाना फजियाना ना मुसा नहीं ना मुकरून, और अगर देख लिया सुन लिया यकीन भी आ गया जो बात सुनते थे वो अब हमने आंखों से देख लिया इन्ना मुकरून, अब हम दोबारा दुनिया में भेज दे हम अच्छे अमल करके आएंगे, आगे मौका हाथ से निकल गया। अभी अल्लाह ने मौका दिया है तो धोखा एक तो मौत पर खुलेगा, एक धोखा अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद खुलता है। चार महीने जब अल्लाह के बनते हैं अल्लाह के रास्ते में जाते हैं और खूब अल्लाह की बड़ाई को बोलते हैं कहते हैं सुनते हैं, दिन के बाद कहते हैं सुनते हैं, दिन के माहौल में रहते हैं, जन्नत और जहन्नम को खूब सुनते हैं कि जन्नत अल्लाह ने कितनी बेहतरीन जन्नत बनाई, ये दुनिया को जो तय खाना है। अब ये थोड़ी सी जिंदगी के बाद में हमें इस आखिर की जिंदगी में हमें जाना है और वही असली जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी एक टेम्पररी जिंदगी है, हकीकी जिंदगी आखिर की जिंदगी है। और जब जन्नत में जो आदमी बंदे जब दाखिल होंगे एक फरिश्ते ऐलान करेगा इन लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा, कि जन्नत में तुम हमेशा हमेशा जिंदा रहोगे, कभी भी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे। जन्नत में जो है दवाखाने नहीं होंगे, वहां बीमारी नहीं होगी, तुम हमेशा हमेशा जो है जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, तुम हमेशा हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी जो है तुम्हें गम लाहिक नहीं होगा, ऐसी जन्नत की तरफ भी दावत देगी। इसलिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, फिर रो इबल्ला अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की जन्नत की तरफ दौड़ो। आज हमारी दौड़ क्या दुकानों की तरफ, चीजों की तरफ, अखबार की तरफ, जिंदगी का मकसद हमने उसको बना लिया। हालांकि जिंदगी का मकसद नंबर एक पर अल्लाह के दीन की दावत है कि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए और कलमे कुफ्र जो है नीचा हो जाए, कलिमतुल्लाह अलिया व कलिमतुल कुफ्र सुफला, ये जिंदगी का हमारा मकसद है। और खाना पीना कमाने हमारी जरूरत है, जरूरत की जिंदगी और है, मकसद की जिंदगी और है। हमने मकसद की जिंदगी को जरूरत बना लिया, जरूरत की जिंदगी को मकसद बना लिया, ये धोखा है। इस धोखे से निकलने के लिए चार महीने मांगे जाते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो इंशाल्लाह इस धोखे से निकलेंगे, फिर दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया में संवारेंगे, ये नहीं कि सिर्फ आखिरत बनेगी, दुनिया में ऐसी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जो सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला जो बरकतें अता फरमाई। मदीना मुनव्वरा में जो है घरों के अंदर सोने के ढेर इस तरह लगते हैं जैसे कि हमारे घरों में अनाज के ढेर लगते हैं, और ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, अल्लाह ने इतना माल दिया, माल में इतनी बरकत अता फरमाई। कसरत तो गैरों को देते हैं लेकिन बरकत अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को दीन की मेहनत की बरकत दुनिया में अल्लाह देंगे, उसका बदला तो आखिरत में मिलेगा। ये दुनिया दीन की मेहनत का बदला के मकाम नहीं है, इसलिए कि एक मतलब सुभानअल्लाह कहना आज दोनों में जबरे ओहद, जबरे ओहद से ज्यादा भारी है, ज्यादा कंसी है। तो दुनिया नेकी का बदला का मकाम यहाँ समा नहीं सकता, उसका बदला तो अल्लाह आखिरत में मिलेगा, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में देंगे, हर चीज में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें देंगे, और अल्लाह तबारक व तआला जो है जो बंदे अल्लाह के दीन के लिए लगे हुए हैं अल्लाह ने उन पर दुनिया में बरकतें दी। इसलिए मतलब दोस्त बुजुर्गो हमें जिंदगी के सत्य बनानी है, अगर इस तरह के हसरत के साथ जिंदगी हमने गुजारी तो गुजर जाएंगे, फिर जो है मलक में बहुत एहतराम आ जाएंगे, फिर सबसे इंसान कौन चाहते तो रोएगा, उस वक्त उसका रोना और पछताना कोई काम नहीं देगा। इसलिए हिम्मत करके बोलो, अब तक की जिंदगी में जो हम सिर्फ आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए, इज्तिमा बयान सुनने के लिए आए, लेकिन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में बात डाली वाकई हाथी की जिंदगी तो आखिर की जिंदगी है, और जैसी यहाँ जिंदगी गुजारेंगे वैसा वहां पर जो बदला मिलेगा। हिम्मत करके चार चार महीने से ये बोलो कि जो चार चार महीने के लिए कौन से गया फरमाओ, अल्लाह की बातों पर यकीन करके बोलो। इस मेहनत के जरिए कितने इंसानों के अल्लाह ने जिंदगी बदली, जो कुफर में थे, शिर्क में थे, गुनाहों में थे, बदकारी में थे।